ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृतं नरोशैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीव्यासं ततो जायामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी।
श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अध्याय छः, जिसमें वर्णन है भगवान ऋषभदेव का कार्यकलाप, श्लोक संख्या 18 18 ना।
राजन प्रति गुरु पत्री रतम भवता जदुनम दैवं प्रिय कुलपतिः क्वच किं करवो। अश्वैव मंगभवनां भजना मुकुन्दो मुक्तिं ददाति कैर्चित्स्य न भक्तिजोगम्। राजन् प्रति गुरुरत्नं भवतां जदूनां दैवं प्रियः कुलपतिः क्वच किं करवः। अस्त्वैव मङ्गं भगवं भजनां कुन्दो मुक्तिं ददाति कैर्चिश्शन भक्तिजोगम्। राजन् पति गुरुरत्नं भवतां जदूनां दैवं प्रियः कुलपतिः क्वच किं करव। अस्त्वैव मङ्गः भगना भजना मुकुंद मुक्तिं ददाति कैर्चिश्शस्य न भक्तिजोगम्।
राजन हे राजा, पति ही पालक, गुरु गुरु, आलम निश्चय ही, भवताम आपका, यदुनाम यदुवंश का, दैवम आराध्यसी विग्रह, प्रियः अत्यंत प्रिय मित्र, कुलपति ही वंश का स्वामी, क्वच यहाँ तक कि कभी कभी, किंकर सबका, वह तुम सबका, पांडव का, अस्तु हो एवं इस प्रकार, अंग हे राजा, भगवान भगवान भजताम सेवा में रत भक्त का, मुकुंद भगवान मुक्तिं मुक्ति ददाति देते हैं, कहिरचित किसी भी समय,
स्मा निसंदेह ना नहीं भक्ति योगम प्रेम भक्ति अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, परम पुरुष मुकुंद सभी पांडव तथा यदुवंशियों के वास्तविक पालक हैं। वे तुम्हारे गुरु, आराध्य, अर्च विग्रह, मित्र तथा तुम्हारे कर्मों का निर्देशक हैं। यह नहीं, वह कभी कभी दूत या सेवक रूप में भी तुम्हारे परिवार की सेवा करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वे सामान्य सेवकों की तरह कार्य करते हैं। जो ईश्वर की सेवा में लगे रहकर प्रिय पात्र बनना चाहते हैं, उन्हें मुक्ति सरलता से मिल जाती है, किंतु ये अपनी प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर बहुत उसने काम ही प्रदान करते हैं। भगवान की विशेष गुण है ये। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि महाराज परीक्षित को उपदेश देते हुए श्रील सुखदेव गोस्वामी ने राजा को प्रोत्साहित करने का उचित समझा, क्योंकि हो सकता है कि वो अपने मन में विविध राजवंश का यशस्वी स्तर के संबंध में सोच रहे हों। विशेष रूप से यशस्वी वंश प्रिय व्रत का है, जिसमें भगवान ऋषभदेव अवतरित हुए हैं। इसी प्रकार महाराज ध्रुव के पिता उत्थानपाद का वंश भी यशस्वी था, क्योंकि उसमें राजा पृथ्वी ने जन्म लिया था। महाराज रघु का वंश भी स्तुत्य है, क्योंकि उसने भगवान श्री रामचंद्र प्रकट हुए। यहाँ तक कुरु तथा यदुवंश का प्रश्न है, ये एक ही समय में विद्यमान थे, किंतु इन दोनों में यदुवंश अधिक यशस्वी था, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। हो सकता है कि महाराज परीक्षित यह सोच रहे हों कि कुरुवंश अन्य वंश के समान भाग्यशाली नहीं था, क्योंकि इसमें न तो कृष्ण, राम या ऋषभदेव उत्पन्न हुए, न ही महाराज पृथु। इसलिए इसी श्लोक में महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी ने विशेष रूप से प्रोत्साहित किया। कुरुवंश को अधिक यशस्वी माना जा सकता है, क्योंकि इसमें पांच पांडव हुए जिन्होंने शुद्ध भक्त थे। यद्यपि श्री कृष्ण कुरुवंश में उत्पन्न नहीं हुए थे, किंतु वे पांडव की भक्ति से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने पांडव के परिवार के पालक तथा गुरु के समान आचरण किया। यदुवंश में जन्म लेकर भी श्री कृष्ण पांडव के प्रति अधिक स्नेहशील थे। अपने कार्य से उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि वे यदुवंश की अपेक्षा कुरुवंश को अधिक चाहते थे। ये पांडव की भक्ति के इतने ऋणी थे कि कभी उनके दूत बनते तो कभी उन्हें भयानक परिस्थितियों से उबरा। इसलिए महाराज परीक्षित को तनिक भी दुख नहीं होना चाहिए कि श्री कृष्ण उनके वंश में नहीं उत्पन्न हुए। भगवान का अपने शुद्ध भक्त के प्रति सदैव अधिक झुकाव रहता है, और इसी क्रिया से स्पष्ट हो जाता है कि भक्तों के लिए मुक्ति अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती। श्री कृष्ण किसी को मुक्ति भले ही दे दें, किंतु सबके अपना भक्त बनाने का अवसर आसानी से नहीं प्रदान करते हैं। मुक्ति ददाति कहिचित रसमय भक्ति जोगम, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रीति से यह सिद्ध हो जाता है कि परमेश्वर से परम संबंध स्थापित करने का आधार भक्ति योग ही है। यह मुक्ति से कहीं श्रेयस्कर है। ईश्वर के शुद्ध भक्त को मुक्ति स्वतः मिल जाती है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम् वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखानितांश नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे वंशकल्पतरुभ्यश कृपासिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो हरे कृष्ण। उपस्थित भक्त सज्जन वृंद माताएं, तो आज बहुत शुभ दिन है। जैसे कि श्रीमद् भागवत में ये कहा गया, और दूसरे सारे ग्रंथों में हम लोग देखते हैं कि ज्यादा से भगवान की वर्णन की गई है, लेकिन श्रीमद् भागवत का ये विशेषता है कि भगवान के साथ साथ उनकी भक्तों की वर्णन इसमें ज्यादा की गई है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का श्री चैतन्य महाप्रभु ये श्रीमद् भागवत में इतने प्रिय करते थे, क्योंकि भक्तों के चरित्र के बिना वास्तविक भगवान की भक्ति नहीं की जा सकती। भक्तों का कहाँ आधार मिलेगा भक्ति करने के लिए जब वो भक्तों का चरित्र ना पढ़े। शास्त्र में भगवान तो भगवद गीता में कहा गया है कि वास्तव में मत भक्तो मत जाजी माम नमस्कुरु, लेकिन करके कहाँ दिखाए, भगवद गीता ने करके नहीं दिखाए। तो भगवान इसी अधूरे काम को पूरे करने के लिए भक्त का रूप में खुद आए भगवान ने। तो श्रीमद् भागवत में हम लोग देखते हैं कि सप्त सत्र में भगवान के भगवत तत्व निरूपित किया गया, लेकिन उससे ज्यादा अपने भक्तों की महिमा गुणगान किए श्रीमद् भागवत में। और आज ऐसा दिन है, ये ग्रंथ भागवत का साथ साथ भक्त भागवत की चर्चा भी हम लोग करने के लिए मौके मिले हैं। यहाँ जैसे इसी श्लोक में और इसी अध्याय में जो पढ़ रहे हैं आप, भगवान श्री ऋषभ देव का चरित्र अभी समाप्त होने वाला है, और इसके साथ साथ आज महान भक्तों की आविर्भाव तिथि है, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की, और इनके साथ साथ रामचंद्र कविराज की तिरुभाव तिथि है। तो हम पहले सत्र में कुछ थोड़ा विशेष आलोचना करेंगे ये ऋषभदेव के चरित्र में। आप लोग सुन चुके हैं कि जबकि ऋषभदेव भगवान के अवतार थे, भगवान होने के नाते भी वास्तविक भगवान को कैसे भक्ति किया जाए वो शिक्षा दी है आके ऋषभदेव ने। तो राजा परीक्षित पूछ रहे थे कि ये करने का क्या जरूरत था भगवान ऋषभदेव को, जबकि उनके शरीर दिव्य था, तो इसी शरीर को नष्ट करने का ये करने का क्या जरूरत था। लेकिन भगवान ऋषभदेव नहीं सोच रहे थे कि हमारा शरीर दिव्य है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने शरीर को ऐसे ही रूप में प्रकट की, वास्तविक ये शरीर से किसी का लगाव नहीं है कुछ भी, ये शिक्षा दी है ऋषभदेव ने भगवान। और जिस शरीर सबको प्रिय है उसको कैसे हम लोग सोचना चाहिए कि मानना चाहिए कि वास्तविक ही तो भौतिक जड़ शरीर है, उसके आत्मा का बिना शरीर का कुछ अर्थ नहीं है। तो इसलिए राजा ऋषभदेव ने, जो कि भगवान की शक्ति वैसे अवतार थे, तो अपने जीवन में ये शिक्षा दिए वास्तविक भगवान होकर भी भगवान की भक्ति करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। अपने सौपुत्र कितने अच्छे शिक्षा दिए थे वहां पे कि वास्तविक जीवन का लक्ष्य यह नहीं कि बस खाना पीना सोना, बस आम आदमी की तरह, ये तो बीड़ी भुजा भी करते हैं, सुअर और ये भी करते हैं ना, तो उसमें क्या लाभ है मनुष्य जन्म हमको मिला। कह रहे कि बहुत भाग्यशाली हमको मनुष्य जन्म मिल गया, ये हुआ, लोग बहुत गर्व करते हैं कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य जन्म से क्या फर्क है, तो उसमें से कोई फर्क नहीं है, गधे सुअर सुई के बिना कोई ये नहीं है। जब मनुष्य का जीवन हम तप नहीं कर सकते, भगवान की भजन नहीं कर सकते, तो उसमें कोई ये नहीं है। तो आज के श्लोक में उसी की पराकाष्ठा दिया कि वास्तविक भगवान की जो भजन जो करते हैं, भक्त बनते हैं, कितने श्रेष्ठ हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के विषय है कि इस जगत में कोई भगवान का भक्त नहीं बनना चाहते, सब भगवान बनना चाहते हैं। आजकल जमाने में ज्यादा भगवान भक्त कम है इसी जमाने, जबकि यहाँ के इसी श्लोक में दिया गया कि वास्तविक जो भगवान है अपने भक्त का वश में आकर कभी कभी दूत बन जाते थे और सेवक बन जाते थे भगवान, जो कि पांडवों का इसमें बने प्रभुपाद जी दिए हैं, अपने तात्पर्य में लिखे हैं। कौन ये बोल सकता कि भगवान किसको सभा में जाके अपने जो युधिष्ठिर महाराज का सेवक बनेंगे। हम लोग देखे ना खूब राजस्व यज्ञ था, भगवान कृष्ण का क्या सेवा था, जो गेस्ट आएंगे उसको अभ्यर्थना करके उनके पाद सेवा करेंगे, तो उनको कोई दिए नहीं थे ये सेवा, सभी को तो बांटा गया सेवा, लेकिन भगवान ये खुद अपने मांग के लिए सेवा। तो उससे हम लोग देखने कि वास्तविक जो भगवान का भक्ति करते भगवान उनके कितने ऋणी बन जाते हैं, और हर पल में पांडवों का कितने सारे विपत्ति आए और भगवान ने सबके सुरक्षा प्रदान की हर क्षेत्र क्षेत्र में, और अभी इन अपने दूत बनकर गए भी हस्तिनापुर इनकी संवाद लेके। और इतने ही नहीं है कि फिर जब कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ तो भगवान ने क्या कि सारथी का पद उसमें निभाए, अपने गाड़ी में कोई ड्राइवर रखते थे, ड्राइवर को कोई इतना सम्मान नहीं देते हैं, लेकिन भगवान उस पद के लिए स्वीकार किए, खुद अपने आए कि हम आपके ड्राइवर बनेंगे, क्योंकि इसमें वास्तविक भगवान का आनंद है। भगवान उसमें दिखाते कि वास्तविक मैं मेरे भक्त का कितने सेवा करने को उत्सुक हूं, और ये भौतिक सारे भौतिक जगत में सड़ने वाले संसारी लोग सोचते हैं कि नहीं हम भगवान हैं, हम भगवान बन जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे ये हो जाएंगे। तो यहां इसलिए बता रहे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की भगवान ने कैसे यदुवंश में तो पैदा हुए थे, लेकिन वास्तविक कुरु वंश को अब विशेष करके पांडवों को कितने कृपा किए, वास्तविक यदुवंश का ऊपर इतना कृपा नहीं किया जितने उनके किए पांडवों को भगवान ने, नहीं हर समय देखिए पांडवों का साथ ही भगवान है, कि ब्रज से जाने के बाद ज्यादा लीला पांडवों के साथ ही भगवान का है। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि पांडव का जो भक्ति में भगवान कितने बस थे, और अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो लोग भगवान के भक्ति करके मुक्ति चाहते हैं ये तो बहुत मतलब बेवकूफी का बात है। इसे प्रभुपाद कहते हैं ना कि कोई बहुत बड़े राजा अमीर राजा के पास आए और उनके 2 रुपए मांगे भी, नहीं ये मुक्ति ऐसा ही है ना। भगवान का नाम इसलिए मुकुंद श्लोक में दिया गया कि वास्तविक की मुक्ति तो उनकी बस इतने ये नहीं कर, वो तो ऐसे ही मिल जाता है उनको। लेकिन तृतीय स्कंद में भगवान कहते हैं कि जब भी 5 प्रकार का मुक्ति देना चाहते फिर भी उनके भक्त जो हैं वो लेना नहीं चाहते हैं, भगवान जाते हैं कि ले जाइए, पर नहीं जाते हैं भगवान के जो भक्त हैं। तो ऐसे भक्त का भगवान कैसे ये कर सकते हैं। नवमस्कंद में हम लोग देख रहे हैं कि अम्बरीश महाराज को ये जब दुर्वासा मुनि ने ये किए, तो दुर्वासा मुनि अंत में जब भगवान की शरण गए विष्णु की, तो भगवान वहां कह रहे कि वास्तविक मेरे भक्त जो है सब कुछ नेछावर करके हमारा शरणागति हुए, हम कैसे उसको इनकार कर सकते हैं। सब कुछ त्याग करके जे मेरे शरण में आता है तो मैं उनको कभी ये नहीं कर सकते, त्याग नहीं कर सकता किसी भी हालत में, क्योंकि हमेशा ये मेरा चिंतन करता है और मैं उनका चिंतन करता हूं। यही वास्तविक भगवान का विशेषता है और भक्तों का। तो आज इसी दिन है, तो इसी जो हर समय भगवान के चिंतन करते हैं उसी भक्त का हम गुणगान करने के लिए कोशिश करेंगे, आप लोग उसमें सहयोग देंगे कृपा करेंगे। तो पहले हम देखेंगे ये रामचंद्र कविराज गोस्वामी के बारे में। तो ये रामचंद्र कविराज गोस्वामी, इनके पिता चिरंजीव सेन थे, ये खंडवासी थे। कि हम लोग देखे कि चैतन्य महाप्रभु का लीला में जब खंडवासी जाते थे, खंडवासी और कौन कौन थे मालूम है आपको ना, मुकुंद नरहरि और मुकुंद के पुत्र रघुनंदन और चिरंजीव उसमें दे गए चैतन्य चरितामृत में। तो ये हर साल चैतन्य महाप्रभु की, जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे ये जाते थे चिरंजीव सेन जो थे। ये चिरंजीव सेन बहुत बड़े कविराज थे, मतलब फिजिशियन थे जो। तो इनके ये पुत्र रामचंद्र कविराज, रामचंद्र ये बचपन से ही भगवान के भक्ति में तल्लीन हुए रामचंद्र कविराज जी। तो इनकी बड़ा विशेषता है, ये जब भी शादी किए थे लेकिन एक ही दिन उनकी स्त्री के साथ ये संभोग नहीं किया कि उनके कोई पुत्र संतान नहीं हुए, बड़े विचित्र के शादी थे इनके। और शादी करने के लिए जाते और शादी का दिन ही उनके बैराग्य आ गया था, बड़े विचित्र शादी थे ये। क्योंकि बहुत बड़े घर के थर्ड पार्ट में इनकी शादी हो रहा था, तो शादी में पालकी में बैठ करके जा रहे, सवार होकर जा रहे थे ये रामचंद्र कविराज। तो जब जा रहे थे उसी समय उनका दर्शन पड़ा श्रीनिवास आचार्य का। कि श्रीनिवास आचार्य को जब देखे तो उनके मन में वही परिवर्तन हो गया पालकी में बैठे। वास्तविक दर्शन पवित्र करे ये तुम्हारा गुण जो हम लोग कहते हैं वैष्णव का वंदना में, ये वास्तविक भगवान के वैष्णव भक्तों का ये विशेष गुण है। गंगा नदी तो हम लोग नहाने के लिए के बाद हम लोग को पवित्र होना पड़ता है, लेकिन वैष्णव के दर्शन मात्र वे पवित्र हो जाते हैं। तब रामचंद्र कविराज जाते थे शादी होने के बाद, तो श्रीनिवास आचार्य को दर्शन मिला उनको, और उनको देख के ही उनके मन में ये जागृत है कि वास्तविक संसार में अभी हम जो शादी करने के लिए घर संसार में मांगना चाहते थे तो उसमें क्या फायदा मिलेगा वास्तविक, ये कितना अच्छे है भगवान की भक्ति में इतने तल्लीन है, हमेशा भगवान का भजन करते हैं ये करते हैं। तो घर में जाके पहुंचे ही उसके अगला दिन आ गए श्रीनिवास आचार्य के पास। घर में सभी तो देख के शादी होने के बाद कोई घर में रहना चाहते ना सभी लोग, लेकिन शादी होने का अगला दिन ही आ गए श्रीनिवास आचार्य के पास और आके उनकी प्रणाम किए। और श्रीनिवास आचार्य जब भी देखे थे ये जब शादी होके जा रहे थे, क्योंकि बहुत जोर शोर से शादी हो रहा था, श्रीनिवास आचार्य अपने पार्षद लोग को पूछते कौन जा रहे हैं, सब बोले कि रामचंद्र कविराज इनके चिरंजीव सेन के पुत्र हैं रामचंद्र। तो उनको देख भी उनके आश्चर्य ये हुआ था कि वास्तविक ये भगवान की बड़ी भक्त हैं। तो जब रामचंद्र जी आए श्रीनिवास आचार्य के पास उनकी शरण लिए तो उनको ऐसे ऐसे बताया कि मैं आपका शरण में रहना चाहता हूं। तो उसी दिन उनको मंत्र दीक्षा हो गया ये रामचंद्र, और वही रहने लगे उनके पास। वैष्णव का सिद्धांत, महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का लीला, ये सब श्रवण कर वहीं रहने लगे रामचंद्र कविराज उसी दिन से। घर तो जाते थे ऐसे कभी कभी, क्योंकि वहां से खंड श्रीखंड से उनकी जो श्रीनिवास आचार्य का बहुत ज्यादा दूर नहीं था, कभी कभी ऐसे जाते, लेकिन पूरा समय यहाँ बिताते थे वैष्णव का सिद्धांत से, चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत ये सब पढ़ने के लिए उनकी समय जाता था रामचंद्र कविराज का। जब ये सब श्रवण किए तो फिर श्रीनिवास आचार्य का अनुमति लेके फिर नवद्वीप आए, चैतन्य महाप्रभु का विशेष लीला स्थान ये सब दर्शन करने के लिए आए, क्योंकि उसी समय चैतन्य महाप्रभु तो अपने धाम में चला गए थे। तो बाद में उनके मन हुआ कि वृंदावन आने के लिए रामचंद्र कविराज का, तो फिर श्रीनिवास आचार्य का आज्ञा लिए, और श्रीनिवास आचार्य उनको बोले कि तुम जाके कहां पर रहना, जीव गोस्वामी के पास रहना। तो वहां से आके जीव गोस्वामी के पास रहे यहाँ राधा दामोदर मंदिर में, और बाकी वहां पे भी भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी उस समय थे, सभी बाकी सभी वैष्णवगण थे, उनकी सभी कृपा प्राप्त किए रामचंद्र कविराज ने। तो वहां पे बहुत सुंदर भजन लिखते थे ये रामचंद्र कविराज। भगवत चैतन्य महाप्रभु का इतने सुंदर भजन लिखते थे, और उसको कहीं जाएंगे मतलब भ्रमण करने के लिए, से कोई वन में इसमें जाएंगे दल से वन से, और आने के बाद एक कविता सुनाएंगे जीव गोस्वामी को। और वैष्णव समाज इतने ये करते थे उनके श्रवण करके, तो बाद में सभी वैष्णव समाज उनके कविराज को उपाधि दिए। उसमें एक बहुत सुंदर पद था चैतन्य महाप्रभु का गुणगान ये करते थे कि चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम का बन्या जो बाढ़ का बहाए, इसमें सारे संसार बहा गए, लेकिन रामचंद्र का ये बहा नहीं पाया, अपने को इतने ये बना ये मानते थे। वास्तविक भगवान के भक्तों का जो यही वास्तविक उनकी बड़े विशेषता है, जब ये अपने भक्ति में बहुत परिपूर्ण है ये लोग, लेकिन अपने को कभी मानते नहीं कि हम भक्त हैं, हम भक्त का कोई गुण है। जैसे हम लोग देखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर के भजन में, नरोत्तम दास ठाकुर के भजन, अपने को कितने न्यून मानते थे। वास्तविक हम लोग शिक्षा जब पढ़ रहे कि तृणादपि सुने, वही उनके गुण में हम लोग देखे वास्तविक उनकी जीवन में, ऐसे नहीं कि खाली कह देते थे, ऐसे नहीं, अपने जीवन में भी ये करके दिखाए उन लोगों की वास्तविक कैसे होना चाहिए भगवान की भक्त। तो उनको ये कबीराज उपाधि वहीं पे वैष्णव जगत वृंदावन में दिए, विशेष करके जीव गोस्वामी ने। तो उसका बाद फिर वापस आ गए ये गौड़देश में, वापस आ गए गौड़देश में आके फिर प्रचार किए। इन्होंने श्रीनिवास आचार्य उनको आदेश दिए थे नरोत्तम दास ठाकुर के सहयोग करने के लिए, बहुत अच्छा उनके ये था कि नरोत्तम दास ठाकुर का साथ, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर क्या है कायस्थ इसमें पे आविर्भूत हुए थे, तो वहां पे उसी समय में जो जाति ब्राह्मण थे तो वो लोग का बहुत बड़ा ये था। नरोत्तम दास ठाकुर बहुत अपराध करते थे, उनको बहुत कुछ बोलते थे, अरे ये वैष्णव होके मतलब कायस्थ घर में तो जन्म हुआ, वैष्णव बन गया मतलब सभी ब्राह्मण लोग भी वैष्णव बना रहे, ये कौन से शास्त्र में लिखा गया। चैतन्य महाप्रभु को ज्यादा विरोधी नहीं करते थे लोग, क्योंकि ब्राह्मण घर में पैदा हुए थे, और श्रीनिवास आचार्य को इसलिए वास्तविक ये आचार्य बनाए थे क्योंकि वो ब्राह्मण घर में पैदा हुए थे। नरोत्तम दास ठाकुर को नहीं मानते थे बंगाल में जो ये थे स्मार्त ब्राह्मण थे, विशेष करके वो बड़ा दुर्भाग्य था बंगाल के कि नहीं मानते थे। तो एक दिन क्या हुआ तो वहां पे एक दिन कंपटीशन शास्त्र युक्ति करने के लिए, क्योंकि जब कोई युक्ति करते थे तो नर्तन राष्ट्रक से आसानी से उसको परास्त कर देते थे पहले वैष्णव शास्त्र का युक्ति से। तो ये गंगा नारायण चक्रवर्ती और ये रामचंद्र कविराज ने एक बार ये लोग निश्चय किया कि यहाँ जो स्मार्त ब्राह्मण है उनको कैसे परास्त किया जाए। और स्मार्त ब्राह्मण भी वो लोग भी बहुत ये किए कि नरोत्तम दास ठाकुर इतने बड़े ये मान रहे अपने को, तो हम लोग जाके उसमें जाके उनको परास्त करेंगे शास्त्र युक्ति में। और वहां तक भी उनके राजा वहां पे भी वो शामिल हो गए, तो बहुत बड़े जो पंडित थे उसी समान के, तो उनको लेके फिर आए यहाँ पे खेतुरी में आए नरोत्तम दास ठाकुर को परीक्षा लेने के लिए। तो ये लोग क्या किए, दोनों रामचंद्र कविराज और गंगा नारायण दास ये क्या किए, गंगा नारायण जो थे नरोत्तम दास ठाकुर का शिष्य थे, और रामचंद्र कविराज जो ये श्रीनिवास आचार्य का शिष्य थे। तो ये दोनों ने क्या किया कि ब्राह्मण लोग, स्मार्त ब्राह्मण लोग को क्या चाहिए, क्योंकि ये लोग ज्यादा ये किसकी इसमें पका हुआ खाना नहीं खाते, वो खुद बना के खाते हैं, इनके इतना थोड़ा ये था, तो एक मटका का दुकान दिए और दूसरे एक दिए उनको चाहिए कि पान सुपारी खाने के बाद चाहिए, तो दूसरे पान सुपारी का एक दुकान दिए। दोनों अपने का भेष बदला दिया, दोनों दो दुकान खोल लिए। तर ब्राह्मण लोग जो आए यहाँ कैंप लगाए, तो सामान खरीदने के लिए आए, मटका खरीदने के लिए और पान सुपारी खरीदने के लिए आए। जो पान सुपारी खरीद रहे थे ये लोग उनको संस्कृत में बात करने लगे कि जानते थे लोग पंडित लोग आए, वो लोग सब सोच रहे अरे क्या ये दुकानदार है ना, संस्कृत पंडित जाएंगे। संस्कृत में जब बात करने लगे तो वो लोग भी थोड़ा अपने को कम नहीं समझे, वो भी अपने साथ युक्ति करने लगे। धीरे धीरे से बहस शुरू हो गया, तो वो लोग सभी परास्त होकर वापस चला गए। तो अपने गुरु के पास गए, राजा के पास गए। तो बाद में से हुआ राजा और उनके गुरु जो थे इस बात में जो पंडित थे उनका, तो वो उनको आना पड़ा फिर वहां पे आने। तो फिर शास्त्र की युक्ति लगन चलने लगा। तो इतना युक्ति होने के बाद वो लोग अपने हार स्वीकार करना पड़ा। तो बाद में उन लोग को ये हुआ कि ये थोड़े दो दुकानदार हैं, कोई मटका बेच रहे हैं और कोई पान सुपारी बेच रहे हैं, तो ये हमको ऐसे परास्त कर दिए शास्त्र में युक्ति में, पूछिए ये दोनों कौन है। तो फिर अपने परिचय दिए कि वास्तविक हम वास्तविक सेवक हैं उनके, नरोत्तम दास ठाकुर का हम सेवक हैं। तो राजा ने बोला कि जब सेवक इतने बलशाली हैं तो उनके गुरु के पास क्या जाना है, यहीं से भागो अपने घर। तो वहीं से यार इसके पास ने फिर नरोत्तम दास ठाकुर जी के पास नहीं गए खेतरी, फिर वापस चला गया उसी दिन, क्योंकि वो लोग शक्त भक्त थे शिव जी का और शक्ति दुर्गा जी का भक्त थे। तो रात में दुर्गा देवी उनको सपना है कि वास्तविक तुम लोग ये अपराध कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर को ये करके, तुम दोनों जाके उनकी शरण ले, चरण में शरण लेना है, नहीं तो तुमको अपने आश्रम में मैं क्या करूंगा, मार दूंगी। तो उसी अगला दिन में क्या किए, दोनों जाके अपने परिजन जितने थे परिजन सबको लेके नरोत्तम दास ठाकुर का शरण लिए। ये रामचंद्र कविराज के विशेष ये था। तो बाद में फिर रामचंद्र कविराज वहां बंगाल में प्रचार किए। प्रचार करने के बाद फिर दोबारा वृंदावन में ब्रज में आए। तब ब्रज में आए तो फिर ब्रज से वापस नहीं गए, यहीं पे इनकी शरीर रखे किए ब्रज में। तो आज का जो दिन है ये रामचंद्र कविराज गोस्वामी के तिरुभाव का तिथि है। तो नरोत्तम दास ठाकुर देखिए जो वैष्णव सदाचार हम लोग देखते हैं कि देखिए ये रामचंद्र कविराज और नरोत्तम दास ठाकुर मतलब गुरु शिष्य का जैसे संबंध है, लेकिन हम लोग जब गाना भजन गाते हैं ना नरोत्तम दास ठाकुर का भजन चैतन्य महाप्रभु के जो पंचतत्व गुणगान किए हैं वहां पे क्या बोले, कृपा कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संगमागे नरोत्तम दास। जबकि उनके शिष्य होंगे रामचंद्र कविराज, फिर नरोत्तम दास ठाकुर एक पद गा रहे कि वास्तविक मैं उनकी संग चाहता हूं। इसलिए हम लोग कभी ये नहीं करना चाहिए, तारतम्य नहीं करना चाहिए कि वास्तविक ये कई नया भक्त हैं, पुराने भक्त हैं, ये भक्त हैं और उनकी इतने भक्ति ज्यादा। हमारा कोई बैरोमीटर नहीं, हम लोग उसमें माप सकते हैं इसके भक्ति कितने हैं। जो भक्तों को, सभी भक्तों को सम्मान, इसमें हम लोग सीख रहे हैं इनके आचार्यों के लीला में। तो नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे कि हम रामचंद्र कविराज की संग मांग रहे हैं। नहीं, वो लोग तो वो सोचते कह रहे तो श्रीनिवास आचार्य के शिष्य, हमारे शिष्य के बराबर हैं, हम इनके संग क्या चाहिए। इसलिए जो वैष्णव है वो नहीं देखते कभी भेदभाव अपने इसमें नहीं देखते हैं कि सभी वैष्णव को उतने सम्मान देते हैं। और दूसरे हम जाएंगे फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी की, आज आविर्भाव तिथि है वृंदावन में, तो सभी आप लोग ज्यादा ही जानते हैं हमसे गोपाल भट्ट, क्योंकि आप ब्रज में आप रहते हैं। अरे गोपाल भट्ट गोस्वामी की बड़ विशेषता है, ये चैतन्य महाप्रभु जी छह गोस्वामी थे, सभी बंगाल के और इसमें थे, एक ही आदमी थे जो कि दक्षिण भारत के थे। हम चैतन्य महाप्रभु जितने अनुयायी सुने हैं और विरक्त जो बैरागी उनकी पार्षद जो देखे हैं, अरे ये एक ही विषय विरक्त सन्यास जो थे बैरागी संत थे जो कि दक्षिण भारत से चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी थे और उनके शिष्य थे। क्योंकि दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत में क्या है कि ज्यादा रामानुजाचार्य संप्रदाय के ये थे, भक्त लोग थे, तो वहां ज्यादा हम लोग नहीं देखे कि चैतन्य चरितामृत और महाप्रभु की लीला में कितने जो सारे दिए हैं, तो हम उसमें नहीं देखे कि ज्यादा से दक्षिण भारत का महाप्रभु का भक्त ज्यादा। हम लोग देखे महाप्रभु के पार्षद से ओडिशा बंगाल की ज्यादा भक्त थे। तो ये इनकी विशेषता, ये रघुनाथ दास गोपाल भट्ट गोस्वामी का ये विशेषता था। जब चैतन्य महाप्रभु, आप लोग जानते हैं कि वेंकट भट्ट जो कि रामानुजाचार्य संप्रदाय के भक्त थे और प्रसिद्ध श्रीरंग मंदिर में सेवा करते थे, सेवायत थे, वहां के मुख्य पुजारी थे भट्ट परिवार, तीन भाई थे वो वेंकट भट्ट, तो तीन भाई सेवा करते थे भगवान रंगनाथ जी के। तो वहां पे बड़े विचित्र ये देखेंगे आप, जबकि रंगनाथ जी हैं दो हाथ वाले हैं, भगवान हैं, लेकिन सभी लोग का ये धारणा है कि वो नारायणी है। अरे नारायण की तो चार भुजा होना चाहिए ना, लेकिन आप देखेंगे रंगनाथ जी की दो भुजाएं हैं। नहीं गए हैं ना आप लोग रंगनाथ जी देखे हैं भगवान के? जब हम पहले सुन रहे थे हमारे भी मन में ये भ्रांत, ये धारणा था, हम डाउट में थे कि संदेह में थे कि वास्तविक ये चार भुजा वाले होंगे, नहीं तो क्यों नारायण रूप में लोग सेवा करते हैं, जबकि हम देखे कि अरे दो भुजाएं हैं ये इनके, ये तो भुजा क्या। अरे ये रंगनाथ जी थे भगवान रामचंद्र की इनके कुल देवता थे, सब इनकी सेवा करते थे, रघुवंशी राजाएं थे। तो इनकी सेवा ये करते थे, वेंकट भट्ट ने करते थे। तो उसी समय में गोपाल बहुत बहुत छोटे थे, 9 साल की उम्र थे, तो चैतन्य महाप्रभु वहां दर्शन किए वेंकट जो रंगनाथ जी को, तो महाप्रभु को तो हमेशा कृष्ण की स्मरण आता था, दर्शन कर जब जाते थे, और वो तो कृष्ण ही वास्तविक, गोदावरी की इतने सुंदर इसमें रहते हैं टापू में, बहुत सुंदर मनोरम ये है जगह है, आप लोग कभी दर्शन करेंगे तो देखेंगे वास्तविक, लेकिन चारों तरफ गोदावरी है और बीच में द्वीप है जैसे, तो वही इसलिए तो नहीं गए भगवान वहां पे, क्योंकि नहीं तो लंका जाने वाले थे है ना, जानते हैं ना आप वो लीला। चलो विभीषण जब गए वापस रामचंद्र का राज्याभिषेक के बाद, तो उनको ये लगा कि नहीं हम भगवान से बिछड़ के जा रहे हैं, हम तो यहीं रहना चाहते हैं अयोध्या में। तो भगवान बोले अरे वो फिर वहां पर काम काज कैसे चलेगा, और रावण तो रहा नहीं, अरे तुमको ये अभी जिम्मेदारी लेना है, नहीं 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 तो गवर्नमेंट पोस्ट पर खाली पड़ जाएगा, फिर ये हो जाएगा, आपको जाना है वहां पे। तो फिर विभीषण ने बोले नहीं मैं आपको छोड़ना ये सहन नहीं कर पा रहा हूँ आपकी विरह। तो भगवान बोले ठीक है हमको ये। तो भगवान ने क्या कि रामचंद्र क्या क्या अपने जो कुल देवता है उनको दिए सेवा करने के लिए, रंगनाथ जी तो आप लेके जाइए उनको, तो आप इनको रखिए, तो आप उसमें हमको दर्शन कीजिए हमेशा। तो विभीषण जी लेके जा रहे थे, पर रंगनाथ जब देखे तो भगवान वहां पे इतने मनोरम सुंदर जगह है, तो उनका वृंदावन का याद आ गया, तो वहीं पे रहने लगे भगवान। तो विभीषण तो वहां पे आप इसलिए देखेंगे वो भगवान की जो मुख है उनके दर्शन कर रहे हैं, वो दक्षिण को दर्शन करते हैं, ऐसे कहीं विग्रह आप नहीं देखे होंगे, क्योंकि भगवान जो यहाँ रह गए तो फिर उठे नहीं जाने के लिए। विभीषण बोले कि आपको प्रभु तो जाना है, भगवान ने आपको दिए थे, आपको जाना है, नहीं नहीं मैं यहीं रहना चाहता हूँ, आप जाइए ना, मैं आपका लंका का ऊपर दृष्टि करूंगा, तो सब सुख कुशल मंगल रहेगा, फिर वहीं से आप हमको दर्शन करेंगे। तो वही रंगनाथ जी हैं, तो इनको सेवा करते थे वेंकट भक्त जी। लेकिन दक्षिणा में तो रामानुज संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण की सेवा करते हैं, तो उसी भाव में सेवा करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु गए तो वहां पे नृत्य कीर्तन आदि किए और भगवान रंगनाथ जी के दर्शन करके मूर्छा हो गए। तो हम लोग देखे कि जैसे ही जगन्नाथपुरी में भी भगवान पहुंचे तो वही भी ऐसे हालत हुआ था भगवान का। चैतन्य महाप्रभु जब देखते हैं भगवान को, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन दर्शन करते हैं विग्रह को, हर जगह में देखिए जब जहां जहां चैतन्य महाप्रभु देखते हैं वही उनका हालत हुआ। वहां से जैसे हम लोग बंगाल से गए भगवान चैतन्य महाप्रभु खीरचोर गोपीनाथ हो गए, वहीं पे ऐसा हालत हुआ था। बाद में साखी गोपाल दर्शन के कटक में वही हालत हो गया, और जगन्नाथपुर में वही हालत हुआ, क्योंकि जब इतने दिन का विरह भगवान जब देखते हैं फिर दूसरे मिलन होता है, तो यही भक्त का भाव और ये होना चाहिए वास्तविक कि भगवान से हम कितने दिन बिछड़ कर रह गए, अब इतने दिन के बाद अभी मिल रहे हैं भगवान के साथ। तो इसी गार्ड मतलब जो अपने मन का जो उत्सुकता है उसको जब प्रबल मात्र में गार्ड बन जाता है तो यही भाव प्रकट हो जाता है फिर। तब सभी लोग वहां पे दक्षिण में तो इतने नृत्य कीर्तन ऐसे नहीं चलता था, कहीं रंगनाथ जी के पास भजन कीर्तन नहीं होता था कभी, इतने थोड़ा बहुत कीर्तन करते थे और लोग उनकी ये में, लेकिन ऐसे नृत्य कीर्तन नहीं देखे कभी दक्षिणा में। तब जब देखे सभी सेवको जितने थे रंगनाथ जी के, सभी आश्चर्यचकित हो गए, कौन है ये आदमी, कौन है कौन है। तब वहां पे मूर्छा होके तो चैतन्य महाप्रभु नीचे पड़ गए थे, तो वेंकट भट्ट जो उस टाइम उनकी पूजा का सेवा था रंगनाथ जी का, तो आके देखे तो सन्यासी हैं ये है। तो अपने घर लेके गए, फिर उनकी सेवा शुश्रूषा किया, ये के चैतन्य महाप्रभु बाह्य ज्ञान आए, तो उनको वैष्णव सन्यासी जानकर वेंकट भट्ट, क्योंकि इसी संप्रदाय में विशेष के ये हैं जो कि चैतन्य महाप्रभु लिए थे अपने अचिंत्य भेद भेद तत्व में, वैष्णव सेवा बहुत ये करते हैं श्री संप्रदाय में, ये बहुत विशेषता है, रामानुजाचार्य विशेष करके सिखाए अपने भक्तों को। तो श्री संप्रदाय का दो गुण लिए थे चैतन्य महाप्रभु, जो चार संप्रदाय के दो दो गुण लिए थे ना चैतन्य महाप्रभु, तो श्री संप्रदाय के दो गुण लिए थे वैष्णव सेवा और कृष्णमूर्ति श्री ब्रह को ऐसे इनको सेवा करना। तो वैष्णव सेवा इसलिए वेंकट भट्ट ने आग्रह किए महाप्रभु का कि आप हमारे घर में भिक्षा कीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु आए, प्रसाद लिए, फिर उसी समय क्या हो गया था, फिर चतुर्मास आ गया था। तो चैतन्य महाप्रभु को आग्रह किए वेंकटो जी चतुर्मास में तो कहीं नहीं जाना चाहिए, तो आप कृपा करके हमारा यहीं विराज ये और रंगनाथ जी के दर्शन कीजिए, कावेरी में स्नान कीजिए और नृत्य कीर्तन कीजिए, हमारे घर में प्रसाद लीजिए हमेशा। कितना बड़े भाग्य था देखिए वेंकट भट्ट, जबकि हम देख रहे हैं कि वो श्री संप्रदाय की थे तो महाप्रभु ने कितने कृपा किया, किसी और भक्त गृहस्थ भक्त कितना कृपा नहीं किया चैतन्य महाप्रभु। जगन्नाथपुरी में हम देखे हैं चैतन्य चरित हम जो पढ़ते थे, जब जाते थे बंगाल के भक्त लोग तो उनके बीच में कंपटीशन लग जाता है कौन किसी दिन चैतन्य महाप्रभु को भोजन में बुलाएगा, किसको मिलता है किसको नहीं मिलता था चैतन्य महाप्रभु को भोजन कराना। लेकिन चार महीना रोज भगवान चैतन्य महाप्रभु इनकी वेंकट भट्ट में प्रसाद लिए इनके घर में, जबकि सार्वम भट्टाचार्य को भी नहीं मिला था इतने सौभाग्य। किस चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे कि सार्वम भट्टाचार्य को मिले कि नहीं आप हर दिन आना हमारे घर में प्रसाद, चैतन्य महाप्रभु के लिए ये तो सन्यासी का लक्षण नहीं है, ऐसे ऐसे करके उनको इनकार कर दिए। एक दिन लिए फिर महीना में प्रसाद, और यही दूसरे स्तर में हम लेके वेंकट भट्ट के घर में चार महीना भगवान रुके, वहां कोई उनके सन्यासी का धर्म नहीं जा रहा था। भगवान ये विशेष लीला करते हैं, जब कृपा करना चाहते किसको तो ये सब कुछ भूल जाते अपने ये, क्योंकि उनको ये वेंकट भट्ट का ऊपर कृपा करना था और विशेष करके उनके पुत्र जो थे गोपाल भट्ट उनके ऊपर कृपा करना था वैश्विक, क्यों जानते थे कि हमारे परम भक्त होंगे। तो चैतन्य महाप्रभु हर दिन क्या करते थे, भागवत आलोचना चर्चा करते थे, तो वहां पे आप लोग सभी जानते कि वेंकट भट्ट तो लक्ष्मी नारायण का सबके थे उपासक थे, तो वो कहते थे कि नारायण है परमेश्वर हैं और कृष्ण रामादि जितने ये हैं ये सभी उनके अवतार हैं, वो कहते थे इनकी। तो चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात ईश्वर हैं, वो जानते थे कि वेंकट भट्ट का क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग जैसे जाके ये करके हमको क्या करते हैं, हम लोग अरे तो आप गलती बोल रहे हैं, महाप्रभु ऐसे नहीं करते थे, महाप्रभु अपने शिष्ट व्यवहार से सबको ये करते थे। और वेंकट भट्ट का साथ महाप्रभु बड़े अपने मित्र संबंध था, तो महाप्रभु फिर उनको बोले कि ठीक है आप भट्ट जी जाकर जो करे वो ठीक है, लेकिन एक बात हमको समझाइए कि ये नारायण जब परमेश्वर है भगवान है, सब उनसे सृष्टि होता है सब कुछ होता है उनसे और सब अवतार उनसे आता है, तो उनके पत्नी जो लक्ष्मी है वो थोड़े छोटे अवतार जो कृष्ण है उनकी ये करने के लिए कैसे जाके तपस्या की है, नारायण से कृष्ण सृष्टि हुए ना वो आप कह रहे हैं, तो उनके फिर कला तो कम हो गए ना, वो अंश बता रहे हैं, अरे उनको पाने के लिए लक्ष्मी जी क्यों जाके तपस्या की, अभी तक बिलोवन में कर रहे तपस्या उनको नहीं मिल रहे हैं। और जबकि वही भगवान को वेद आदि पुराण उपनिषद वो प्रार्थना के लिए उनको मिल गया वो कृपा, तो आपके लक्ष्मी को कहीं नहीं मिल रहा है। तो और सभी जानते हैं कि लक्ष्मी बड़े पतिव्रता है और दूसरों को जाके ध्यान कर रहे हैं उसमें पतिव्रता का धर्म नष्ट नहीं हो रहा है, तो वेंकट भट्ट जी बोल गए कहां प्रतिवर्तक नष्ट होता है, और नारायण और भगवान कृष्ण में कोई अंतर तो है ही नहीं है, तो उनके अवतार हैं लेकिन उसमें कोई अंतर नहीं है। तो बाद में जो चैतन्य महाप्रभु उनको ज्यादा युक्ति करते हैं कि लक्ष्मी को यह कृपा नहीं प्राप्त हुआ, जब उपनिषद वेद को यह प्राप्त हो गया था तो लक्ष्मी अभी तक भी तपस्या कर रहे हैं, उनकी कृष्ण का कृपा नहीं मिल रहा है, और हमारे आराध्य जो गोपाल हैं तो वो तो ग्वाल बाल हैं, इनके पीछे क्यों भाग रहे हैं ये। तो वेंकट भट्ट जी बोले कि प्रभु आप ही जाने आपकी लीला, हमको तो ये मालूम नहीं, हमारा बुद्धि में ये नहीं आ रहे। तो भगवान फिर बाद में समझाते हैं इनके कैसे हैं, भगवान कृष्ण से वास्तविक सभी प्रकार का ये आता है जितने, और मूल पुरुष भगवान कृष्ण है, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। तो बाद में वेंकट भट्ट समझते हैं फिर ये वास्तविक शास्त्र। तो उसी समय गोपाल भट्ट जो थे वो बहुत छोटे थे, 10-11 साल के बच्चे थे, तो उनको सहज ही ये सेवा मिल जाता था चैतन्य महाप्रभु का, तो वहीं रह के सेवा करते, चैतन्य महाप्रभु का प्रसाद आदि सेवा करते थे, उनके कपड़े धुलाई करते थे, ये करते थे। तो और ये चैतन्य महापुरुष प्रसाद पाने के बाद उनकी जो उच्चिष्ट प्रसाद भी गोपाल भट्ट गोस्वामी को मिल जाता था। तो चैतन्य महापुरुष का ये कृपा, एक दिन क्या हुआ, गोपाल भट्ट को चैतन्य महापुरुष इतने ये लगे कि एक दिन सेवा करते करते झाड़ू पोछा कर रहे थे वो कमरे चैतन्य महापुरुष जहां रहते थे, तो वहां चैतन्य महापुरुष का चरण स्पर्श करके वहां प्रणाम किए महापुरुष को। जब स्पर्श करके प्रणाम किए तो तुरंत ही उनका शरीर में क्या हुआ, पुलक कंपित ये जाते हुआ, तो फिर वो भूल गए कि वो कहां पे हैं। तो वहां पे गोपाल भट्ट ये स्वप्न देख रहे हैं कि उनको ये एक वीर सन्यासी कहीं लेके जा रहे हैं, और को नहीं, यही चैतन्य महापुरुष होते हैं, और भगवान के कृष्ण को वहीं देखते हैं, ये करते हैं चैतन्य, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ऐसे करके फिर वो क्या हुए, कृष्ण का ये अंतर्ध्यान हो गया, फिर वही सन्यास रूप आ गए। तो फिर वो रोने लगे गोपाल बच्चे रो, तो महाप्रभु फिर उनको शांत कराए, बोले कि सुंदर ये रूप जो है भगवान कृष्ण जो है वही चैतन्य महाप्रभु हैं, तो ये सन्यास वेश लेने का क्या जरूरत है आपको, मैं आपका ये लीला देखना चाहता हूं वास्तविक की नवदी का लीला। तो महाप्रभु फिर कृपा करके अपने पाद पद्म उनके सार में रखे, फिर वो दर्शन कराए नवदी का लीला, उनकी बाल्य लीला दर्शन कराए गोपाल। लेकिन महाप्रभु उनको सावधान कीजिए, किसको बोलना नहीं ये सब चीज। तो उसी समय जब चैतन्य महाप्रभु का चतुर्मास खत्म हुआ, तो चतुर्मास महाप्रभु निकलने लगे, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले नहीं मैं तो आपके साथ जाऊंगा प्रभु। महाप्रभु बोले नहीं नहीं धैर्य रखो, घर में अपने माँ बाप है उनकी सेवा करो, जब ये लोग का ध्यान तो हो जाएगा फिर तुम वृंदावन आ जाना, शादी नहीं करना। लेकिन तो बाद में फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, गोपाल भट्ट ने प्रबोधानंद सरस्वती जो थे उनकी प्रबोधन था पहले उस समय, वो उनके चाचा लगते थे, तो उनसे दीक्षा मंत्र लेके फिर पढ़ाई शुरू किए, वेद वेदांत अध्ययन सब किए, और उसमें कई कई वर्णन आता है कि यही प्रबोधानंद बाद में इतने बड़े पंडित बन गए कि बनारस में आके प्रकाशानंद सरस्वती बने, बाद में फिर चैतन्य महाप्रभु का कृपा से प्रभानंद सरस्वती बने ये चैतन्य महाप्रभु जी। तब ऐसे कार्यक्रम जैसे समय बीत गए, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिता माता वृद्ध आ गए, उनके समय भी अंत हो गया, और गोपाल भट्ट क्या किए वृंदावन में आ गए। वो आने से पहले चैतन्य महाप्रभु बताए थे रूप सनातन जी को कि ऐसे गोपाल आएगा तुम अपने भाई की तरह उनको रखना। तल गोपाल भट्ट गोस्वामी जब आए वृंदावन, उसी चैतन्य महाप्रभु को उसके बाद दर्शन नहीं किए, और 4 महीना पूरा हो गया था उनके दर्शन का, उसके बाद दर्शन नहीं दिए चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु को जब संवाद मिला, रूप सनातन भेजे चैतन्य महाप्रभु कैसे गोपाल भट्ट आ गए करके, तो चैतन्य महाप्रभु फिर जगन्नाथपुरी से अपने कंथा गोपिन और बैठने के लिए जो आसन अभी भी आप देख रहे हैं वहां पे है ना, गोपाल भट्ट गोस्वामी का समाधि में, वो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से भेजे थे उनके लिए। तो वहां पे फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी उनके नाम पढ़े, तो राधा कुंड के पास जाबड़ के पास राधा भजन करते थे, और एक बार उनकी यह थोड़ा दूसरे उत्तर भारत का भ्रमण करने के लिए, तो सहारनपुर होकर जब जा रहे थे वहां गंडकी नदी वहां पर जाते थे, तो सहारनपुर में एक ब्राह्मण उनको मिला था, उनके घर में भिक्षा किए थे, तो वो ब्राह्मण का कोई संतान नहीं थे, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को आग्रह किया कि हमारे घर में आप भिक्षा कीजिए प्रसाद लीजिए। तो प्रसाद लिए गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, बाद में फिर वो ब्राह्मण बताया कि उनकी ये उनको एक पुत्र संतान नहीं है, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले कि आपको पुत्र संतान मिलेगा, कोई इसमें चिंता मत कीजिए, आप कृष्ण का भजन कीजिए। तो भगवान का भजन कराए उन्होंने, और उन्होंने ये भी वादा किया कि जो पुत्र पहले जन्म होगा तो आपके सेवा में उनको दूंगा, वही वास्तविक गोपीनाथ पुजारी जो बने पैर में यहाँ गोपाल भट्ट राधा रमन जी के पहले सेवक थे गोपाल भट्ट के बाद। राधा जो गोपीनाथ से पुजारी थे उनके, अरे उन तो शादी नहीं किए थे, उनके बाद उनके भाई थे दामोदर गोपीनाथ जी की, तो उनके वंश जो है अभी जो देख रहे हैं आप, जो गोस्वामी परिवार जो देख रहे हैं, दामोदर की से वंश जो हैं ये लोग। तो वहां पे फिर आप ये गोपाल भट्ट गए, फिर आर उत्तर गए तो गंडकी में उनके शालिग्राम प्राप्त हुआ था वहां पे, सभी जानते हैं आप, तो हम उसको ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, समय आपका हो रहा है नहीं। तो शालिग्राम प्राप्त तो हुआ था उनको, वहां से लेके आए थे दामोदर शालिग्राम, तो यहाँ पे आके सेवा कर रहे थे केसी घाट में, जैसे आप लोग को मालूम है लीला। तो श्री शालिग्राम से जब उनको मिला बहुत भगवान के गहने और ये मिला, तो सोचने लगे क्या करना है उसको, तो इंद्र पहनाने से तो शालिग्राम और शिला तो है, तो शिला को नहीं पहना सकते, तो भगवान ने क्या किया अपने भक्त का ये समझ गए। तो वहां से फिर राधा रमण जी प्रकट हुए वैशाख पूर्णिमा में नहीं, तो फिर उनके, क्योंकि हम ये जब यह पढ़ रहे थे भागवतम में, भगवान क्या करते अपने भक्त का बसते स्वीकार करते, हम लोग देखे ज्यादा लीला में हम लोग देख रहे हैं जो ये, कि जब भगवान बसते स्वीकार नहीं करेंगे तो भगवान के जो भक्ति करने के लिए जो प्रयासी भक्त हैं वो फिर भजन नहीं करेंगे, वो लोग इसको क्या मिलता, रूखा सूखा है, इसमें कोई कुछ रस नहीं है। तो इसको हम लोग वास्ते कि भक्त का यही है कि आशाबद्ध है, जैसे उसको कहते हैं यहाँ पे भक्त रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने, यही एक आशा है कि वास्तविक कौन सा दिन किसी दिन हम भगवान के ऐसे भक्ति कर सकते हैं, जैसे ये भक्त ने ऐसे भक्ति आचरण किए, उनको भगवान ने इतना कृपा किए, हमको भी किसी दिन ऐसे कृपा प्राप्त हो, उसी आशा में भगवान के भक्त लोग सेवा करते हैं। और भगवान क्या कि अपने भक्तों का चरित्र में ऐसे करके दिखाए वास्तविक कैसे भजन करना चाहिए। तो गोपाल भट्ट ऐसे जब राधा रमण जी की सेवा कर रहे थे, तो सेवा करने के बाद ये गोपीनाथ आए तो युवक देखे, ये जमुना में स्नान करने के बाद देखे तो एक लड़का खड़े हैं, वो तो उनको पूछे, बोले कि हमारे पिताजी ने भेजे सहारनपुर से, नहीं नहीं कि वो आप जो गए थे उनको याद कराए, तो उनको याद आया कि ऐसे ऐसे। तो फिर बाद में उनके भाई जो है दामोदर आए, फिर वहां से फिर इनकी, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का दूसरे ये देख रहे हैं उनके अवदान जो है ये हमारा वैष्णव समाज में है, जो हम लोग षट क्रिया दर्पण ये जो देख रहे हैं, वास्तविक हरिभक्त विलास जो है ये रूप गोपाल भट्ट की ही पहला का ये है कार्य है, बाद में इसको सनातन गोस्वामी ने पूरा किया, लेकिन आप अंत में पढ़ेंगे तो हरिदास हरिभक्त विलास में उसमें लिखे हैं कि वास्तविक ये गोपाल भट्ट ने ही इसको ये किए थे, ये हरिभक्त विलास जो है। और षट कर्मण ये जो है ये गोपाल भट्ट की, और जो षट संदर्भ जो है वास्तविक जीव गोस्वामी ने उसको संपूर्ण किया, इसको वास्तविक इनिशिएट किए थे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, जीव गोस्वामी ने इसको संपूर्ण किया वास्तविक। तो ये महान आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी का आज आविर्भाव तिथि है, उनकी हम लोग कृपा प्रार्थना करेंगे, और दोनों आचार्य जो है तो हमारे भक्ति में ऐसे भगवान के प्रति ऐसे भक्ति भाव आए, ताकि हम लोग इस भक्ति में टिके रहें और अंत में भगवान की सेवा में पूरी तरह अपने जो जन नियुक्त हों और जन्म सार्थक करें। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी की, रामचंद्र कविराज की, श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, सामवेद भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।